ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द शिवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हाँ, तो जगन्नाथपुरी में हम हैं और आज हमने चैतन्य महाप्रभु की जो प्रमुख लीला स्थलियाँ हैं उनका विजिट किया था, श्वेत गंगा और फिर गंगा माता गोस्वामिनी का मठ जो सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है, और तीसरी स्थली थी चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थली जिसे गंभीरा कहा जाता है या फिर काशी मिश्र का आलय कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम पुरी में आए तो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में रहे, वहाँ से उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की 2 साल के लिए, और फिर चैतन्य महाप्रभु वापस आने ही वाले थे, समय नज़दीक आ गया था, तो सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में चिंता उत्पन्न हुई कि महाप्रभु वापस आने वाले हैं, उनके लिए एक निवास स्थान हमें ढूंढ लेना चाहिए। तो उन्होंने राजा प्रताप रुद्र को निवेदन किया और कहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण हैं, राजा प्रताप रुद्र तो कैसे स्वीकार करेंगे, किसी स्क्रिप्चर्स में तो ऐसा वर्णन नहीं था। तो उन्होंने कहा आप कह रहे हो इसलिए मैं उनको परम भगवान के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार का फेत राजा प्रताप रुद्र का सर्वम भट्टाचार्य के ऊपर था। तो राजा प्रताप रुद्र के जो पिता थे उनका नाम था पुरुषोत्तम देव, अभी महान भक्त थे। पुरुषोत्तम देव के पुत्र हुए प्रताप रुद्र राजा। एक्चुअली जगन्नाथ के सबसे पहले जो भक्त हैं वो कौन है, राजा किंग। जैसे मैं उस दिन भी ट्रेन में कह रहा था, पता नहीं ट्रेन में या कहा, जैसे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ओबामा, उनकी जो पत्नी है उसको फर्स्ट लेडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट लेडी। तो उसी प्रकार से जगन्नाथ के फर्स्ट डिवोटी कोई है, वो कौन है, राजा गजपति। तो इंद्रद्युम्न के लिए भगवान अवतरित हुए थे, तो वही जो सिक्वेंस है राजाओं का वो यहाँ तक आया है। तो ऐसे जो प्रताप रुद्र थे उनको ये निवेदन करते सार्वभौम भट्टाचार्य, तो उन्होंने कहा कि आप महाप्रभु के लिए ऐसा स्थान दो जो जगन्नाथ टेम्पल से नज़दीक हो और थोड़ा एकांत में भी हो, बहुत सबके साथ नहीं हो, महाप्रभु के लिए उचित नहीं है। तो राजा प्रताप रुद्र ने कहा कि मेरे जो कुल गुरु हैं काशी मिश्रा, उनका जो घर है जिसको आलय कहा जाता है, आज भी आप गए थे तो देखा होगा, लिखा होगा काशी मिश्र आलय, जहाँ काशी मिश्र का घर, अभी भी वो सारी दीवारें सब कुछ है गंभीरा का। गंभीरा का मतलब है डीप, गंभीर, जहाँ महाप्रभु ने इस जगत में जो अनुभव या प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा जो गंभीर भावावेश है श्रीमती राधिका का, उसको आस्वादन किया था चैतन्य महाप्रभु ने। महाप्रभु एत कही गौर हरि दुई जनार कंठ धरी, कहे सुन स्वरूप राम राय, कहाँ करो कहाँ जाओ कहाँ गेले कृष्ण पाओ, दुहे मोरे कह से उपाय। तो महाप्रभु ने वास्तव में श्रीमती राधिका का जो भाव है उसको ड्रिंक कर लिया, पी लिया, कौन सी जगह में, गंभीरा में। तो महाप्रभु अपने जो दो संगी थे उन दोनों के संग में वो रहा करते थे और दोनों के संग में ही अपने हृदय के जो डोर्स हैं, चैतन्य चरितमृत कहता है कि हृदय के जो कपाट हैं, उन कपाट को खोलते थे। भंडार चैतन्य महाप्रभु के हृदय में जो दुख का भंडार है वो किसी और के सामने नहीं खोलते थे। किसके सामने खोलते थे? केवल दो डिवोटीज के सामने। एत कही गौर हरी दुई जनार कंठ धरी, कहे सुना स्वरूप राम राय। हाँ, उससे पहले वो कहते हैं कृष्ण राधरामृत ताते कर्पूर वंद स्मिता स्वमाधुर्य हरे, कि कृष्ण का जो अधरामृत आदि है वो सारे जगत को आकर्षित करने वाला है। और फिर महाप्रभु गंभीरा में निवास करके केवल उसी को पान कर रहे थे। और उनके हृदय में दुख क्या था? कहां गेले कहां पाओ ब्रजेंद्र नंदन, कि जो मेरे प्रेम के ऑब्जेक्ट है, विषय है, वो अभी चले गए हैं। कृष्ण कहां चले गए थे? मथुरा चले गए थे। इसलिए श्रीमती राधिका के हृदय में जो विरह या डीप लॉन्गिंग जिसको कहते हैं, वो एक वॉल्केनो की तरह बाहर आ रही थी। और वो किसके पास जाकर कहें, किसके पास जाकर मेरा गहरा दुख को मैं निवेदन करूं? तो उनके पास दो डिवोटीज थे, एक थे स्वरूप दामोदर और दूसरे थे रामानंद राय। उनका कंठ धरते थे, उसका मतलब है उनके गले में मिल जाते थे, आलिंगन करते थे। और उनको कहा कहा करते थे, कहां करो कहां जाओ कहां गेले कृष्ण पाओ, क्या करने से क्या करूं मैं, रोते हुए कहते थे। हाँ, कहां गेले कृष्ण पाओ, कहां जाने से मुझे कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं। यही उनका एक रोना था। दुहे मोरे कहे से उपाय, आप दो प्लीज, दोनों लोग मुझे सॉल्यूशन दो, उपाय बताओ कि क्या करना चाहिए मुझे। कानू या कृष्ण मेरे खो गए हैं। तो ऐसे जब चैतन्य महाप्रभु गंभीरा पर जो निवास स्थली है, सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा को निवेदन किया और राजा ने कहा काशी मिश्र का घर उनको दे दो। काशी मिश्र को जब निवेदन किया, उन्होंने कहा अरे चैतन्य महाप्रभु के लिए मुझसे घर मांग रहे हैं, घर क्या, मैं अपना प्राण देने के लिए तैयार हूँ, ये घर तो छोटी सी चीज है। तो काशी मिश्र ने ये नहीं कहा कि ठीक है चैतन्य महाप्रभु एक कमरे में रुक जाएंगे और फिर मैं एक कमरे में रुकता हूँ, नहीं, उन्होंने कहा इतना वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है। भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा आमारा बले थे प्रभु आर किछु नाय, हे प्रभु मुझे अपना कहने वाली कोई भी चीज नहीं है, ये सारा आपका ही है। तो काशी मिश्र ने बिल्कुल ही निश्चिंत होकर और इतना आनंद की अनुभूति हो रही थी कि मेरा घर हम महाप्रभु की सेवा में इस्तेमाल हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा से आए तो नित्यानंद प्रभु, जगदानंद दास, दामोदर पंडित ये इंतजार कर रहे थे। और उन्होंने फाइनल किया सर्वम भट्टाचार्य ने कि ये घर उनको देंगे। तो जो गंभीरा है वो पूरे घर को तो काशी मिश्र आलय कहते हैं, लेकिन उसके अंदर तीन दरवाजों को पार करके एक स्थान है, वो क्या है, गंभीरा है, छोटा सा प्लेस। इतने बड़े महाप्रभु 7 फुट के, इतने बड़े आचार्य, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण आते हैं और कितना स्पेस लेते हैं, सारा जगत उनका ही है। ईशावाश्यम इदम सर्वम ईशोपनिषद में वो कहते हैं। हाँ, लेकिन कितने स्थान में वो रहे, छोटा सा जो वो रूम हम देख रहे हैं वहां महाप्रभु रहते थे। ऐसे नहीं कि पूरा ड्राइंग रूम महाप्रभु का अलग था, बेडरूम अलग था, किचन अलग था, मीटिंग रूम अलग था, नहीं, महाप्रभु ने वहां रहकर ही श्रीमती राधिका के भाव को आस्वादन किया। मतलब भगवत भक्ति करने के लिए हम यदि सिंसियर हैं तो हम बहुत ही जो फैसिलिटी है वो मायने नहीं रखती। हाँ, आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन आप गंभीर हो तो आप गंभीरता से भगवत भजन कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के लिए वो प्लेस दिया, इतना बड़ा घर, महाप्रभु ने छोटा सा स्थान चूज किया, वहां वो रहे। और जब महाप्रभु आए तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जैसे काशी मिश्र के घर में प्रविष्ट हुए तो चारों दिशाओं से हजारों हजारों भक्त आने लगे। हाँ, अलग अलग कितने, 9 सन्यासी तो महाप्रभु के साथ रहते थे, ऐसे वैरायटीज ऑफ डिवोटीज हैं, 64 महंता, 64 गौड़िया महंत हैं, डिवोटीज है प्रमुख, उनका वर्णन आता है। तो महाप्रभु के पास अलग अलग डिवोटीज आते थे और रहना चाहते थे, उनका संग लाभ करना चाहते थे। महाप्रभु तुरंत उनको एक रूम देते थे और एक सर्वेंट देते थे, कुकिंग का फैसिलिटी देते थे। इसको कहते हैं टेकिंग केयर ऑफ डिवोटीज। महाप्रभु किस प्रकार से भक्तों का केयर करते थे, ये भगवत भक्ति का प्रमुख अंग है। डिवोटीज का केयर, इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल केयर, ये तीन प्रकार का केयर यदि किसी भक्त को मिलता है तो भगवत भक्ति से कभी वो च्युत नहीं हो सकता, गिर नहीं सकता। भगवत भक्ति में वो वायु की तरह रफ्तार से आगे जाएगा। ये केयर बहुत आवश्यक है। जैसे कोई छोटा सा बीज हम रोपित करते हैं और उसको रेगुलरली जल आदि देते हैं, खाद आदि प्रोवाइड करते हैं, तो वो ग्रो होने लगता है। फिर डिफरेंट प्रकार का केयर है। जैसे छोटा सा बच्चा है, माता पिता, बहन बांधव आदि कैसे केयर करते हैं, उसको नर्चर करते, बड़ा हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब हम भगवत भक्ति में आते हैं तो हम मैच्योर नहीं हैं, हम उसके समान हैं, नए नए अंकुरित हुए एक बीज के समान हैं। तो उसको हमेशा केयर की आवश्यकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे केयर नहीं चाहिए। हमें हमेशा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल केयर की आवश्यकता है, इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता है, केयर की आवश्यकता है और फिजिकल केयर की आवश्यकता है। ये तीन चीज़ों को एक भक्त ने स्वयं अपने जीवन में देखना चाहिए और जितना हो सके हमें दूसरों को क्या करना चाहिए, ये तीन प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। हम जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, केयर करते हैं, तो फिर हम नेचुरली ग्रो करने लगते हैं कृष्ण भक्ति में। तो चैतन्य महाप्रभु के पास इतने सारे डिवोटीज आते थे, तो चैतन्य महाप्रभु सबको प्लेस प्रोवाइड करते थे। और फिर एक बार चैतन्य महाप्रभु के पास दो डिवोटीज आए जो उनके गुरु भाई थे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई थे, एक का नाम था गोविंद और दूसरे का नाम क्या था, काशीश्वर पंडित। तो उनको गोविंद को अरे बोल कोई एक केयर करो उसका, सब मत बातें करो यहाँ। तो कोई चैतन्य महाप्रभु के पास माधवेंद्र पुरी ने अपने दो शिष्यों को भेजा था, कहा कि आप क्या करो, जगन्नाथपुरी में जाओ। और चैतन्य ईश्वर पुरी ने अपने दो शिष्यों को भेजा था, इतना गोविंद और काशीश्वर पंडित, की जाओ और चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगो। तो गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए वो आए और आकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में समर्पित हुए। तो महाप्रभु को और लग रहा था, उनको उचित नहीं लग रहा था कि मैं अपने गुरु भाई से सेवा लूं। तो लेकिन उन्होंने सार्वम भट्टाचार्य से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सार्वम भट्टाचार्य ने कहा गुरु आज्ञा सर्वोपरि, गुरु का जो ऑर्डर है वो सबसे उत्कृष्ट है, सर्वोपरि है। तो उनको, मैं भी वो आपके गुरु भाई हो सकते हैं लेकिन गुरु ने आज्ञा दिया है आपकी सेवा करने के लिए, तो आपको उनको सेवा में लगाना पड़ेगा, सेवा देनी पड़ेगी, तो उनके लिए उचित है, उनकी शुद्धि आदि के लिए। चैतन्य महाप्रभु फिर इन दोनों को अपने पास रखते हैं, हम गोविंद को अपना पर्सनल सर्वेंट के रूप में। तो गोविंद चैतन्य महाप्रभु का कुकिंग आदि करते थे, मसाज करते थे, उनकी जो अंग सेवा है वो सब करते थे, उनके लिए कमंडलू जल आदि लेकर जाते थे उनके साथ रोज जगन्नाथ दर्शन के लिए। और जो काशीश्वर पंडित हैं वो चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथ मंदिर में जाते थे दर्शन के लिए। हाँ, जब भी चैतन्य महाप्रभु निकलते थे तो बहुत भीड़ होता था टेम्पल में, तो उन सबको अपने हाथों से इधर उधर भगाते थे और महाप्रभु के लिए स्पेस बनाते थे। बाद में हम सुनते हैं कि जब रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद देव के विग्रह उनको मिले उस वहाँ वृंदावन में, तो उन्होंने एक लेटर लिखा कि मुझे एक डिवोटी चाहिए गोविंद देव की सेवा करने के लिए। तो उस समय रूप गोस्वामी का लेटर टोटा गोपीनाथ मंदिर में आया, चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित और भक्तों के संग में बैठे थे। पढ़ के इतना आनंद हुआ चैतन्य महाप्रभु को, अरे रूप गोस्वामी को गोविंद जी के विग्रह मिले हैं और उनकी सेवा में वो लगे हैं। उनको एक भक्त की आवश्यकता है, तो किसको भेजो? अभी कौन व्यक्ति महाप्रभु से दूर जाना चाहते हैं? कोई नहीं जाना चाहेगा। तो उन्होंने काशीश्वर पंडित को कहा, काशीश्वर आपके लिए प्रमुख सेवा है ब्रज भूमि वृंदावन में। ये जो रूप गोस्वामी है, उनके जो गोविंद देव है, उनकी पूजा की, पूजा अर्चना की सेवा तुम्हें संभालनी है। तो फिर वो जाना नहीं चाहते थे, कहते आपको कैसे छोड़ के जाऊं, हाँ नहीं जा सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय से गौरांग का विग्रह प्रकट किया, उसको गौर गोविंद कहते हैं, इतना छोटा सा है, बहुत सुंदर। आप जयपुर जाते हो तो वहाँ आप उनका दर्शन कर सकते हो। गोल्डन डीटी चैतन्य महाप्रभु ने काशीश्वर पंडित को दी, काशीश्वर पंडित, और कहा कि गोविंद देव के पास ही इनको रखो, हाँ, और ये मुझसे अभिन्न है। गौर गोविंद उनका नाम रखा गया और उनकी उपासना करो। तो काशीश्वर पंडित उनको लेकर ब्रज जाते हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु फिर गंभीरा में रहने लगते हैं, कई प्रकार की लीलाएं होती हैं, और विशेष रूप से सार यही है। गंभीरा के बारे में तो बहुत कुछ वर्णन किया जा सकता है। वहाँ जो अपने विग्रह देखे कृष्ण के, वो राधा कांत है, क्योंकि जब राजा पुरुषोत्तम देव दक्षिण भारत पर भारत गया था युद्ध के लिए, तो विजय होने के बाद अब उन्होंने 3 विग्रह अपने साथ लाए थे और एक राजकुमारी पद्मावती, हाँ, जो प्रताप रुद्र की मदर है, साक्षी गोपाल के, जिन्होंने अपने नाक से जो ज्वेल है वो ऑफर किया था। तो भगवान, जब ये राजा पुरुषोत्तम देव ने दक्षिण भारत से वहाँ के जो राजा थे उनको हराया, और वहाँ से 3 विग्रह लाए, एक तो भांड गणेश, दूसरा है राधाकांत, और तीसरे थे साक्षी गोपाल। तो भांड गणेश, क्योंकि वहाँ के राजा ने कहा था यदि मैं तुम्हें युद्ध में पराजित करूंगा तो तुम्हारे जो जगन्नाथ है उनको मैं मेरे गणेश के पीछे रखूंगा। तो जगन्नाथ जगत के नाथ है, हाँ, वो कांची गणेश, ये कांचीपुरम की स्टोरी है, तिरुपति के पास कांचीपुरम है। हाँ, तो फिर राजा को पराजित किया और उनका जो भांड गणेश है, गणेश गणपति, उनको ले आए। तो उनका मैं विजय हो गया तो तुम्हारे गणेश जी को मेरे जगन्नाथ के पीछे रखूंगा। तो भांड गणेश का विग्रह वहाँ है। इस बार हम टेम्पल में गए नहीं, सब प्लेसेस में दर्शन करने, देखते हैं 3 दिन की मॉर्निंग में जा सकते हैं। और फिर दूसरे हैं साक्षी गोपाल, कुछ प्लेसेस में वर्णन आता है कि उनको तो पहले कटक में रखा था। नित्यानंद प्रभु जब महाप्रभु से मिलने के लिए 20 साल भ्रमण किया तो नित्यानंद प्रभु उड़ीसा आए थे और उन्होंने कटक में साक्षी गोपाल का दर्शन किया था। वहाँ के लोकल लोगों से उन्होंने साक्षी गोपाल की कथा को सुनाया था। अजय चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर बंगाल से पुरी आए तो साक्षी गोपाल की लीला का वर्णन नित्यानंद प्रभु ने किया था, और खीरचोरा गोपीनाथ का वर्णन स्वयं महाप्रभु ने किया था। तो ऐसे साक्षी गोपाल, और तीसरे विग्रह थे राधाकांत। तो राधाकांत, कांत का मतलब होता है पति, राधा के जो पति हैं उनको राधाकांत कहा जाता है। तो राधाकांत को इन्होंने जगन्नाथ टेम्पल में रखा, फिर जगन्नाथ की कई चीजें वो खाया करते थे। तो राजा पुरुषोत्तम देव को कहा कि इनको भगाओ यहाँ से, जगन्नाथ देव ने कहा कि नहीं चलेगा, एक मैन में 2 तलवार कैसे रह सकती है। तो फिर उनको यहाँ रखा काशी मिश्र के आलय में। काशी मिश्र कुल गुरु थे प्रताप रुद्र के, तो उनकी पूजा आदि करते थे। तो महाप्रभु जब रहते थे तब से वो राधाकांत उधर ही है, राधाकांत के विग्रह। फिर आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु के वहाँ एक छोटा सा बालक रहा करता था जिनका नाम था गोपाल गुरु। पहले नाम तो गोपाल गुरु नहीं था, पहले नाम था मकर ध्वज पंडित। वो हमारे परंपरा के बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं, मकर ध्वज पंडित। अब राधाकांत का दर्शन किया हो आपने, जहाँ सब गंभीरा में नाच रहे थे, वहाँ जो डेटीज हैं, तो अल्टर के बाहर ही हरिदास ठाकुर के जैसे बैठे हुए विग्रह हैं, वो उनके हरे मकर ध्वज पंडित। तो ऐसे ये बालक एक बार देखा कि कोई, कई बार लोग कई जगह वर्णन आया कि चैतन्य महाप्रभु या फिर कोई और डिवोटी को देखा कि वो नेचर कॉल अटेंड करने के लिए जब सुबह गया, हम क्लीनिंग के लिए जाते ना, तो उस समय वो व्यक्ति सोच रहा था उसकी जीवा हमेशा कृष्ण कृष्ण बोला करती थी। अरण्य सौचार्य में एक गंदे स्थान में बैठा हो मल का त्याग करने के लिए अशौच है, शुचि नहीं है, ये मुचि का स्थान है, तो ये जीवा को कृष्ण नाम नहीं लेना चाहिए, इसको ना स्टॉप करता हूँ। दांत में पकड़कर बैठ गए तो ये बालक वहां से गुजर रहा था। उन्होंने कहा रे मृत्यु कभी भी आ सकती है, इवन मल त्याग करते समय भी मृत्यु आ सकती है, इसलिए सदैव क्या होना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जब महाप्रभु को बोला तो महाप्रभु ने कहा ये ऑर्डिनरी बालक नहीं है, ये आज से सबका गुरु है, उनका नाम गोपाल गुरु रखा और हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं, उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है, राधाकांत उनके प्रिय विग्रह थे। महाप्रभु के बाद गंभीरा का अधिकार गोपाल गुरु के पास आया, फिर उनके अलग अलग शिष्य। तो ऐसे गोपाल गुरु गोस्वामी वहाँ निवास करने लगे। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहा करते थे और उनकी कई लीलाएं आती है, और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु, जैसे मैंने हर बार कह रहा हूँ, राधा रानी के भाव को आस्वादन करते हैं। तो महाप्रभु को रात्रि के समय ये लोग लॉक कर देते थे, तीन दरवाजे बंद कर देते थे, तीन दरवाजे में बड़े बड़े लॉक डालते थे और फिर बाहर कोई डिवोटी सो जाता था, गोविंद या चैतन्य महाप्रभु का जो गंभीरा है उसके बाहर स्वरूप दामोदर सोया करते थे। लेकिन जब सुबह ये लोग उठ जाते थे तो देखते थे कि तीनों दरवाजे खोलने के बाद चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में नहीं है। महाप्रभु कहाँ गिरे हुए हैं, सिंह द्वार के गेट में, गायों के बीच में, जहाँ बहुत सारी गायें हैं उनके बीच में चैतन्य महाप्रभु गिरे हैं, लेकिन उनका जो 7 फुट लंबा शरीर है वो और लंबा हो गया है, हर जो जॉइंट है, हर उंगली का, हाथ का, पाव का, हर बॉडी का जो जॉइंट है वो खुल गया था, खुल के वो फैल गया था। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं ऐसे जो महाभाव के जो लक्षण हैं कोई सर्व सामान्य जीव प्रकट नहीं कर सकता, अधिकारी नहीं है, ये जगत में ऐसे भाव के लक्षण पाए नहीं जाते, ना देखे जाते हैं, ना देख सकते हैं, केवल चैतन्य महाप्रभु ही उनको प्रकट कर सकते हैं। तो महाप्रभु का जो दिव्य शरीर है वो बिल्कुल एक बोरी के समान हो जाता था, कैसे कैरी करोगे आप, कैसे उठाओगे, जॉइंट सारे खुले हुए हैं। तो ये लोग फिर पहले तो रोज आते थे, महाप्रभु के मुख से फेन निकला हुआ होता था, सारे गायों के बीच में बैठे होते थे, लेटे होते थे मूर्छित अवस्था में, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में। तो फिर ये डिवोटी स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, काशीश्वर, गोविंद, परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, ये सब ढूंढने के लिए निकलते थे और उनको देखते थे कि उसके सामने है। फिर उनको बहुत दुख होता था, रोने लगते थे और क्या करते थे, उनके कान में जाकर लाउडली चांट करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को फिर उठाकर वो लोग वापस ले आते थे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु कभी कभी श्रीमती राधिका के भाव में पूरी रात, जैसे वो एक प्रेम का लक्षण है, श्रीमती राधिका कृष्ण के विरह में कृष्ण का स्मरण करते करते क्या करती है, अपने पांव के नाखूनों से जमीन को क्या करती है, कुरेदती रहती है। जब आप किसी और में ऑब्जर्व हो जाते हो तो ये सब एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। महाप्रभु रात्रि में उसके अंदर नहीं रह पाते, गंभीरा के अंदर, तो क्या होता था, स्वरूप दामोदर बिल्कुल गंभीरा के बाहर लॉक करके सोया करते थे और रात्रि भर देखते थे कि महाप्रभु की आवाज आ रही है, गुरु 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 की आवाज आ रही है, और जो नाक है तो दीवार में घिस रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घिस रहे हैं बाहर जाने के लिए, किसके मिलने के लिए, कृष्ण को, जगन्नाथ को। तो ये जो दिव्य भाव के लक्षण प्रकट किए हैं, कृष्णदास कविराज कहते हैं मेरे पास बोलने के लिए बहुत है, और मैं चाहता हूं कि मैं वर्णन करूं, बोलूं इन सब चीजों को, और कोई कहेगा कि क्यों ये सब चीजें बोलते जा रहा है, उन्होंने कहा मैं भक्तों के सामने नहीं बोलूंगा तो बोलूंगा किसके पास, किसके पास ये कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करूंगा। महाप्रभु के भक्तगण इसको नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? ये सारे दिव्य कार्यकलाप क्या हो जाएंगे? कालांतर में लुप्त हो जाएंगे। इसलिए कृष्णदास कविराज इनको वर्णन करते और कहते कि जो कोयल के समान भक्त हैं, जब इसको सुनेंगे चर्चा करेंगे तो मधुरता का अनुभव करेंगे अपने हृदय में, और कानों के लिए भी वो मधुर लगने लगेगा। चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, कार्यकलाप हैं, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु केवल वहाँ रोया करते थे। और कभी कभी मतलब ये सीक्रेट था कि वो कैसे गायब हो जाते थे। जो छेद होता था थोड़ा रूम का, उसमें से महाप्रभु निकल के चले जाते थे लॉक होने के बावजूद भी। तो कृष्णदास कविराज कहते कि महाप्रभु रोया करते थे, वो कहते थे कहा मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहा करो कहा पाओ ब्रजेंद्र नंदन, कि मेरे प्राणनाथ मुरली का वादन करने वाले कृष्ण कहाँ हैं, कहा करो कहा पाओ ब्रजेंद्र नंदन, कि कहा क्या करूं मैं कि ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को मैं प्राप्त कर सकूं। कहा रे कही बके बा माने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोर बुक। उन्होंने कहा कहारे कही बा के बा जाने मोर दुख, किसके पास जाकर मैं अपने हृदय का दुख बोल सकूं, कौन समझेगा मेरे हृदय के दुख को। और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के हृदय को दुख को समझने के लिए कोई पात्र नहीं है। उन महाप्रभु तो श्रीमती, मैं सोच रहा था कि वास्तव में कृष्ण जब महाप्रभु के रूप में आए तो उनके हार्ट सर्जरी करके भेजा था उनको, स्पेकुलेशन, लेकिन ये मैच हो रहा है। कृष्ण के हार्ट को निकाल दिया और किसका हार्ट डाल दिया वहां? राधिका का। इसलिए तो प्रॉब्लम हो गई चैतन्य महाप्रभु को। तो उन्होंने कहा रे कहे ब केवल जाने मोरा दुख, मैं अपने हृदय की इन वेदनाओं को किसके पास जाकर कहूं, कौन वो क्वालिफाइड है जो इसको समझ सकता है, जान सकता है। वास्तव में श्रीमती राधिका के हृदय दो ही लोग जानते हैं, ललिता और विशाखा। इसलिए वही दोनों स्वरूप राम राय, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के रूप में आते हैं। ब्रजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोर बुक, बुक का मतलब पुस्तक नहीं, हृदय। बंगला वैसे बड़ा मीठा भाषा है, तो वहां कृष्णदास कविराज कहते कि महाप्रभु रो रहे हैं और वो कह रहे हैं ब्रजेंद्र नंदन बिनु, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के बिना मेरा हृदय फट रहा है। मतलब इतना अधिक गहरा अनुराग चैतन्य महाप्रभु को है, इसको उनकी विरह दशा कहा जाता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु गंभीराने गंभीर जो भाव है डीप कृष्ण के प्रति, उसका आस्वादन करते थे, वो प्रमुख कार्य था। फिर वहां तो कई भक्तों के साथ अलग अलग प्रकार की लीलाएं हुई हैं। एक छोटा सा लीला आता है कृष्णदास कविराज अंत्य लीला के 10वें अध्याय में वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन भक्तों के संग में बहुत प्रसाद लिया और इतने थक गए बॉडी, तो चैतन्य महाप्रभु जो गंभीरा का गेट है, अंदर दरवाजा है, वो अंदर जाके सोने की भी उनको डिजायर नहीं हो रही थी। मतलब इतने थक गए हैं कि जो दरवाजे का बीच का भाग होता है, क्या कहते हैं उसको, पार्टीशन होता है ना, चौकट, चौकट में वो लेट गए, आधा शरीर अंदर आधा शरीर बाहर। गोविंद ने कहा अंदर तो जाओ, मैं उठने नहीं, बहुत टायर्ड हूँ। हम तो कई बार हम बहुत ये हो जाते हैं ना, नहीं नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। तो गोविंद उनकी सेवा कर रहा था, तो उनको कहा कि मैं आपकी सेवा, उनको उनको उनका काम था, महाप्रभु जो रेस्ट करते थे नून में तो मसाज किया करते थे। तो जब महाप्रभु बहुत थके थे, वो अंदर प्रॉपरली रेस्ट नहीं कर रहे थे, चौकट में ये सो गए थे, तो अभी इनको अंदर जाना था, कैसे जाएंगे। शास्त्र कहते हैं वैष्णव या विग्रह आदि को लांगना नहीं चाहिए, तुलसी की छाया आदि जो भी स्पिरिचुअल पैराफेनेलिया है उनको लांग के नहीं जाना चाहिए, महा अपराध है। हम चाहे बुक है, करताल है, मृदंगज है, वो जो भी चीज़ें होती है, या डिवोटीज हैं, डिवोटीज बैठे हैं या सो रहे हैं, तो जंप लगा के ना जाए, लांगे नहीं हम, हाँ वो अपराध है। यहाँ तो साक्षात कृष्ण सो रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और अभी गोविंद का ये सेवा है, तो गोविंद ने क्या किया, जाना है उस तरफ, तो अपना ऊपरी जो वस्त्र है उसको निकाला, बहिर वस्त्र, और उसको फैलाया महाप्रभु के शरीर में, और ऊपर से यहाँ जंप लगा के उस तरफ पहुंचा। हाँ, तो महाप्रभु के चरण आदि का मसाज करना है, तो वो मसाज करते रहे, मसाज करते लंबा समय बीत गया, 1 घंटे से ज्यादा हो गए। महाप्रभु बिल्कुल रिफ्रेश हो गए, और उन्होंने कहा, गोविंद तुम अभी तक यहाँ ही बैठे हो, तुमने प्रसाद नहीं लिया, सुबह से गए नहीं प्रसाद पाने के लिए। कहते कैसे जाऊं मैं, कैसे जाओ, आप सो रहे थे, फिर उन्होंने कहा तुम वहां कैसे गए। उन्होंने कहा वो तो आपकी सेवा के लिए था, और ये मेरी इंद्रिय तृप्ति है, इसके लिए मैं आपको लांग नहीं सकता, आपकी सेवा के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, सारे अपराध सारे पापों को झेलने के लिए तैयार हूँ आपकी सेवा के लिए, लेकिन जब मेरी अपनी सेंसेस की सेवा आती है तो उसके लिए मैं वो अपराध पाप आदि मोल नहीं ले सकता। वही भावना हम वृंदावन में देखते हैं। नारद जब द्वारका में गए तो कृष्ण ने कहा हेडेक हो रहा है, मुझे क्या चाहिए, धूली चाहिए, मेरे भक्त के चरणों की धूली। अभी नारद जाने की क्या आवश्यकता है, पहले डिवोटी उन्होंने खुद देना चाहिए, और डरपोक है, उन्होंने कहा नहीं मैं जाता हूँ, आपकी जो पत्नी है ना बहुत प्रेम करती है आपसे, उनके पास जाके बोलता हूँ। पत्नी काहे का प्रेम करती है, आप कुछ पर्सनली मत लीजिए। तो विवाह जब गए तो उन्होंने कहा देखो कृष्ण को सरदर्द हो रहा है, उन्होंने कहा वैद्य डॉक्टर से, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, और फिर उन्होंने कहा ये सब चलेगा नहीं, उनके लिए एक ही मेडिसिन चाहिए, उनके प्रिय भक्त के चरण रज चाहिए। तो उन्होंने कहा कैसे नारद, कुछ पत्नी कैसे दे सकती है अपने चरणों का धूल, उसके तो नरक जाना पड़ेगा, काफी एटिकेट्स है, वो एटिकेट्स बताएंगे तो आप भाग जाएंगे, डर जाएंगे शास्त्रों के। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम नहीं देंगे, और नरक जाना पड़ेगा। तो नारद ने कहा ठीक है। नारद ऐसी सबके पास गए, सब नाना कर रहे थे, ब्रज में गए तो गोपियां नर्मदा के किनारे में थी, वो उनका कोई बिजनेस ही नहीं है। अब सोचो जो व्यक्ति 100 साल तक गया है छोड़कर, कोई उसका स्मरण कर सकता है क्या, नहीं। मतलब ऐसे था कि अभी अभी कृष्ण गए हैं, इसी फ्रेश भावना में वो जी रही थी, और सदैव सेम कृष्ण के नामों का गुणों का लीलाओं का वर्णन कर रही थी गोपियां। कृष्ण बुक में पढ़ते हैं गोपियां सारा एक्टिव कहते आपको याद है गोपी, है सखी तुम्हें याद है कैसे पूतना को मारा था, तो एक गोपी पूतना बन जाते थे, एक गोपी छोटे से बाल कृष्ण बन जाते थे। तो जितनी लीलाएं कृष्ण ने किए थे संपादन ब्रज में, उन सारी लीलाओं को ये गोपियां ड्रामा एक्ट करते थे, और उसी में अपना हजार कई साल बिताए। इस प्रकार से कृष्ण को अपने हृदय में उन्होंने बांध दिया था, वो भूल नहीं सकती थी। और ये कृष्ण भावना है। कृष्ण भावना का मतलब है कि सदैव कृष्ण का स्मरण होना, और कृष्ण को कभी भी ना भूलना। तो इस पर ये सार है, ये प्रमुख रूल है। तो ऐसे जो गोपियों के पास गए तो गोपियां बिल्कुल रोदन कर रही थी, कृष्ण के बारे में चर्चा कर रही थी। नारद गए तो नारद ने कहा एक इम्पोर्टेंट सर्विस के लिए मैं आया हूँ, मिशन लेके आया हूँ, हाँ मुझे मेडिसिन चाहिए। उन्होंने कहा कौन बीमार है, कहते आपके जो ना ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण बीमार है, द्वारका देश क्या क्या बीमारी क्या हो गई है, सर दर्द हो रहा है, द्वारका में रहेंगे 16,100 पत्नियां हैं, सर दर्द नहीं होगा तो क्या होगा। गोपी का है, उन्होंने कहा हेडेक बहुत बड़ा हेडेक है। तो फिर गोपी का है कृष्ण कहते हैं, नारद कहते कि उनको मेडिसिन चाहिए उनके भक्तों की पद धूली। तो फिर गए, उन्होंने कहा हे गोपिकाओं क्या आप दे सकती हैं आपके चरणों की बलि? नारद, आप बैग्स लेके आए हो क्या, बोरिया? नारद को कहते बैग्स ले आओ, नारद बैग्स, बड़े बड़े बैग्स, बोरिया लेके आओ। गोपियों ने तुरंत वहां से कूद लगाई। उनको तो इतना आनंद हुआ कि ये कितना लंबे समय के बाद छोटी सी सेवा करने का मौका मिला है। हम तो पागल हो गई हैं कि कब कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिले। ये किसको कहते उत्साह। सर्विस के लिए क्या करना, अपने आप को डाल देना। मानस देह जो किशु मोर अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, मेरा जो मन है, देह आदि है, आपने जो भी मेरे पास योग्यताएं या जो भी फैसिलिटीज दी हैं, मैं उसको अर्पित कर रहा हूँ नंद किशोर आपके चरण कमलों में। तो ऐसे गोपिकाओं ने इस मूड को उन्होंने पकड़ा और उन्होंने, जैसे प्रभुपाद के जीवन में आता है, जब जदुरानी माता जी ने एक पेंटिंग बनाया, तो प्रभुपाद अपना वो टीन का ट्रंक लेकर वहाँ बैठते थे, उसको अपना वो बना लिया था उन्होंने, डेस्क बनाया था, स्टडी टेबल जैसा, और एक चटाई था, चटाई में बैठते थे, यही उनका सब कुछ था प्रभुपाद के पास। तो ये जदुरानी ने जब वो बनाया पेंटिंग, तो उत्साह से ले आई और वो सोचने लगी कि प्रभुपाद जहाँ बैठते हैं वहाँ दीवार में लगाऊंगी। तो आए, लगा रही थी तो प्रभुपाद के चटाई में पाँव दिया, पाँव पड़ा। हाँ, फिर वो लगाते ही बात करते, क्षमा कीजिए, मैंने आपकी चटाई के ऊपर पाँव दिया। हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा कृष्ण की सेवा के लिए तुम मेरे सर पर भी पाँव दे के खड़े हो सकते हो। हाँ, इसको कहते हैं सर्विस एटीट्यूड। तो ये गोपिकाओं ने कहा नारद, बड़े बड़ी बोरियाँ बैग्स वगैरह लेके आओ। और जब वो बातें कर रही थी उससे वो उछल गए, तुरंत गए। हाँ, कहाँ गए, जमुना के जल में गए और जमुना में अपने चरणों को धो लिया। धोकर बाहर आए रज में और उदंडता से क्या करें, नाचने लगे। नारद, कितना रज चाहिए, कितना धुली चाहिए, पागल की तरह नाचने लगी, ले लो। तो नारद चकित हो गए। नारद ने कहा तुम्हें भय नहीं लग रहा है नरक आदि जाने का? तो ये जो गोपी भाव आदि जिसको कहते हैं वो यही है कि सर्विस के लिए हम सदैव वो रहें, तत्पर रहें। जब आपने भौतिक इच्छा आदियों को लेकर हम अपने आप को रोक के रखते हैं, सर्विसेस में पूरा नहीं डालते हैं, तो हम वास्तव में कृष्ण की सेवा, ये बहुत जन्मों के बाद रेयर अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, वो छूट सकती हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु रो रहे थे, कहाँ मोर प्राण नाथ मुरली वदन, कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र नंदन विनु फाटे मोर गोप, मेरा हृदय फट रहा है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने गंभीरा में इस भगवत प्रेम या श्रीमती राधे रानी का जो भाव है उसका आस्वादन किया। तो ऐसा ही एटीट्यूड गोविंद में था। गोविंद भी अपने स्वार्थ आदि के लिए, अपने भोजन आदि के लिए बाहर नहीं आए, चैतन्य महाप्रभु के शरीर को उन्होंने लांगा नहीं। इस प्रकार की कई सारी लीलाएं होती हैं। तो ऐसा गंभीरा का लीला स्थली है और चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत भरा पड़ा है उन सब लीलाओं से। फ्यूचर में कभी हम सुन सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरिदास ठाकुर समाधि, ठीक है, उसको भी बोलता हूँ। तो समाधि नहीं है वो, सिद्ध बकुल। तो चैतन्य महाप्रभु जब आके रुके तो कृष्णदास, काला कृष्णदास गए नवदीप के सारे भक्तों को कहा कि महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा से वापस आए हैं। तो फिर उनको मिलने के लिए नवदीप के सारे भक्त पहली बार जगन्नाथपुरी की यात्रा में आए। तो महाप्रभु को मिलने के लिए नवदीप के बहुत सारे भक्त आए और चैतन्य महाप्रभु अलग अलग भक्तों से फिर मिलने लगे। महाप्रभु पूछने लगे कि वो भक्त आया है क्या, वो भक्त आया है क्या, वो भक्त आया है क्या। तो ऐसे काफी सारे भक्त मिले। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरिदास ठाकुर कहाँ है, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर में संन्यास लेकर आए थे और वहां से महाप्रभु निकल रहे थे, तब हरिदास ठाकुर ने कहा था कि आप चले जाओगे जगन्नाथपुरी तो मेरा क्या होगा, मेरी कोई गति नहीं है आपके अलावा, आप मुझे भी जगन्नाथपुरी ले चलो। महाप्रभु ने कहा नहीं अभी नहीं, तुम क्या करना भक्तों के साथ आना, मेरे साथ नहीं। तो फिर हरिदास ठाकुर बाद में अद्वैत आचार्य इन सब भक्तों के ग्रुप के साथ आए, और आए तो महाप्रभु जहाँ रह रहे थे वहाँ सारे डिवोटीज मिल रहे थे, लेकिन बीच में ही उन्होंने पूछा हरिदास कहाँ है, तो किसी ने कहा देखो देखो वहाँ दूर देखिए महाप्रभु, वहाँ बड़ा दांड, ये जो बड़ा रोड है उसके ऊपर गिर के आपको प्रणाम कर रहा है। दूर थे महाप्रभु से वो, तो महाप्रभु ने कहा चलो चलो। तो महाप्रभु दो तीन भक्तों को लेकर हरिदास ठाकुर के पास गए, हरिदास को उठाया। हरिदास ठाकुर बड़े अपने आप को विनम्र और अधम, नीच, पतित, म्लेच्छ, यवन, इन सारी उपमाओं को लेकर गिरे हुए थे, बहुत अयोग्य समझते थे अपने आप को। उन्होंने कहा मैं कैसे सिंह द्वार के सामने जाऊं, मैं तो अधम हूँ, पतित हूँ, मेरा स्पर्श करने मात्र से जो भगवान के सेवक गण हैं वो दूषित हो जाएंगे और जगन्नाथ की सेवा में बाधा आ जाएगी, और हम अपने आप को क्या कहते हैं, दर्शन पवित्र कर ये मोर गुण, हाँ मेरा गुण क्या है, मेरा लोग दर्शन करेंगे तो तुम पवित्र हो जाओगे, हाँ क्यों नहीं रोज मेरा दर्शन करते हैं। क्या हरिदास ठाकुर कहते हैं ये मेरी स्थिति है, बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने जो सात प्रहरी भाव 21 घंटे के लिए महाप्रकाश लीला को प्रकट किया था श्रीवास आंगन में, तो वहाँ वो अलग अलग भक्तों को वर देते थे, मांगो जो चाहे वो मांगो, कोई कहता था ना मेरे माता पिता भक्त ने उनको भक्त बना दो, मेरा गुरु में श्रद्धा नहीं, श्रद्धा बढ़े, ऐसे सब बोलते थे। फिर हरिदास ठाकुर को बुलाया, हरिदास क्या चाहते हो तुम, तो हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम्हें याद है जब तुम्हें 22 बाजारों में वो जो यवन शासक है बादशाह आदि है उसके जो मल्लाज है वो मार रहे थे 22 बाजारों में, तो उस समय मैं वहां था और मैं चक्र लेकर आया था उनका वध करने के लिए, लेकिन तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं उसके कारण मैं रुका हुआ था, क्योंकि तुम ये कहते जा रहे थे कि इन लोगों को पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, हे कृष्णा आप इनको क्षमा कीजिए। मतलब हरिदास ठाकुर के ऊपर इतना प्रहार हो रहा था, इतना कष्ट उनको मिल रहा था, लेकिन फिर भी दूसरे जीवों का वो अमंगल नहीं चाह रहे थे, ये भक्त का लक्षण, ये बहुत उन्नत अंडरस्टैंडिंग है, उन्नत रियलाइजेशन है। हमारा थोड़ा कुछ हो जाते हैं हम सारी उंगलियां तोड़ने लगते हैं, उसके नाम से हजार गालियां देना शुरू करते हैं, शाप देना शुरू करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तो लेकिन महाप्रभु के जो भक्त है ये उनका ये विशेष गुण है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम्हें पता है, तुम कहोगे कि आप नहीं थे वहां, देखो देखो मेरे पीठ को देखो, महाप्रभु ने अपना पीठ खोला, हाँ पीछे का दिखाया, जब वो जल्लाद तुम्हें चाबुक से मारे जा रहे थे, पिटाई कर रहे थे, तो तुम्हारे पीठ के ऊपर मैं आलिंगन करके सारा जो क्या कहें चाबुक के जो प्रहार है वो कौन ले रहा था, मैं स्वयं ले रहा था। तो महाप्रभु के पीठ में बहुत सारे निशान थे, तो हरिदास ठाकुर रोने लगे इस प्रकार से देखकर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरिदास मांगो कुछ मांगो, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक ही चीज की मैं कामना करता हूँ, एक ही आकांक्षा मेरे हृदय में है कि सदैव आपके भक्तों का संग में मुझे रखो और आपके भक्तों का उच्चिष्ट में ग्रहण करो, बस इससे अधिक मुझे और किसी चीज की कामना नहीं है। महाप्रभु ने देखा अरे ऐसे ऐसे गुण मेरे भक्तों में है, ऐसा ऐसा उनका इतना बड़ा हृदय है, तो महाप्रभु उनको कहते कि तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। फिर चैतन्य महाप्रभु से यहाँ वो आए हरिदास ठाकुर पुरी में, और उन्होंने कहा कि आप मुझे आपके चरणों में कोई स्थान दे दो जहाँ मैं सदैव आपका गुणगान कर सकूँ, नाम उच्चारण आदि कर सकूँ, और मुझे जो भी मिले प्रसाद के रूप में मैं उसको ग्रहण करके संतुष्ट रहूंगा। तो हरिदास ठाकुर के लिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं वो प्लेस ढूंढा जहाँ हम आज गए थे सिद्ध बकुल, वो गंभीरा से नजदीक है, गार्डन, वहां पेड़ पौधे होते थे। हरिदास ठाकुर को कुटिया बनवाई महाप्रभु ने स्वयं, कहा कि हरिदास तुम यहाँ निवास करो और यहाँ सदैव कृष्ण नाम का उच्चारण करो। हाँ, तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर का जो प्रगाढ़ आसक्ति है नाम के प्रति, उसके कारण चैतन्य महाप्रभु रोज उनके लिए प्रसाद दे जाया करते थे। हरिदास ठाकुर ने यह नहीं सोचा कि अभी मैं बहुत दुखी नहीं, रो नहीं रहे थे कि अरे मुझे जगन्नाथ टेम्पल में जाना मिला नहीं, यहाँ दर्शन नहीं किया, तो लेकिन वहाँ स्वयं जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं आते थे, उनको प्रसाद और अपना दर्शन देते थे। तो ऐसे हरिदास ठाकुर वहाँ निवास करने लगे, और वहाँ ऐसा कोई बड़ा वृक्ष नहीं था जिसके नीचे वो बैठ के जप आदि कर सके। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने गए तो उनको पुजारी ने दातुन दिया। जनरली दातुन नीम का होता है, तो तीन पर्सनालिटीज को तीन दातुन ऑफर करते हैं, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। तो एक उस दिन एक दातुन कम हो गया था, तो पुजारी ने बकुलट ट्री का दातुन रखा था। फिर महाप्रभु जब सुबह आए तो महाप्रभु को उन्होंने वो बकुल वृक्ष का दातुन महाप्रसाद दे दिया, तो महाप्रभु उसको लेकर कहाँ चले गए, हरिदास ठाकुर के पास। हरिदास ठाकुर के पास गए कि देखा हरिदास ठाकुर निरंतर नाम कीर्तन करता है, हाँ कोई ऐसा प्रॉपर छाया वगैरह नहीं है, तो महाप्रभु ने उसको रोपित किया। हाँ, रोपित करने मात्र से वो वृक्ष के रूप में प्रकट हुआ। कहा हरिदास इसके नीचे तो निरंतर नाम गान करो। हाँ, तो उसके नीचे फिर बैठा करते थे, कथा करते थे, मीटिंग्स करते थे, रूप गोस्वामी आते थे, सनातन गोस्वामी, वो प्लेस भगवत भक्तों की लीलाओं से भरा है। तो ऐसे हरिदास ठाकुर वहाँ रहने लगे, और आज सुबह ही मैं शायद डिस्कस कर रहा था डेथ प्लान, आज या कल, आज, तो वो डेथ प्लान वहाँ ही दिया था, किसने रिवील किया था, हरिदास ठाकुर ने। तो हरिदास ठाकुर निरंतर नाम लेते थे, फिर उनको कहा कि मैं बीमार हूँ, क्या बीमारी है कि मेरा नाम संख्या पूरी नहीं हो रही है। तो फिर महाप्रभु गए मिलने और कहा, उन्होंने वो सब बातें की, कहा कि आप तो अप्रकट होने वाले हैं, आपके विरह को मैं कैसे सहन करूँगा। फिर उन्होंने कहा मैं कैसे त्याग करना चाहता हूँ अपना शरीर, हाँ मेरे आँखों के द्वारा आपके दो, आपका जो मुख कमल है उसको देखूँ, और मतलब अपने दो नेत्रों से आपका मुख कमल का सौंदर्य का पान करते रहो, और आपके जो दो चरण कमल है मैं अपने हृदय में धारण करो, और एक जीवा से क्या करो, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, लाउडली एक साथ, हाँ श्री कृष्ण चैतन्य, इस ये नाम मेरे जीवा से उच्चारण करो और अपने देह को आपके समक्ष त्याग दो। तो ये इतना बड़ा डिजायर, हाँ तो उन्होंने कहा कृष्ण इसकी पूर्ति करेंगे। तो दूसरे दिन महाप्रभु सारे भक्तों को ले आए, आए तो हरिदास ठाकुर लेटे हुए थे, हाँ महाप्रभु उनके पास बैठे, हरिदास ठाकुर हाँ के सर को अपने हाथ में लिया, हरिदास ठाकुर महाप्रभु के चरण मुख कमल को देख रहे हैं, जिस प्रकार से हाँ वो जैसे कि पी रहे हैं उनकी सुंदरता को, और फिर उनके चरणों को उठा के अपने छाती में लगाया, उसका आलिंगन किया, हाँ और अपने जीवा से क्या उच्चारित किया उन्होंने, श्री कृष्ण चैतन्य। कृष्णदास कविराज ने इस लीला का वर्णन अंत्य लीला में पूरा एक चैप्टर समर्पित किया है, फुल एक चैप्टर है जिसमें इस पूरी लीला का वर्णन है। और फिर महाप्रभु बहुत दुखी हो गए, फिर महाप्रभु ने सारे भक्तों को एकत्रित किया और अपने हरिदास ठाकुर के गुण को बोलने लगे। कृष्णदास कविराज कहते कि महाप्रभु इतने आवेश में आकर बोल रहे थे कि उनके पास पांच पांच मुख हो गए हों, मतलब अपने भक्तों का गुणगान करने के लिए वो रुक नहीं सकते थे, एक के बाद एक प्रशंसा उनके मुख से निकल रही थी हरिदास ठाकुर के लिए। और पूरे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में या चैतन्य लीला में किसी एक भक्त का सबसे अधिक गुणगान किया है तो वो कौन है, हरिदास ठाकुर। किसी और भक्त का इतना अधिक गुणगान पूरे दो ग्रंथों में नहीं पाया जाता, कितने सारे अध्याय हैं। फिर महाप्रभु ने उनके शरीर को अपने हाथ में लिया और सारे भक्तों ने सर्कल बनाया और महाप्रभु उनकी बॉडी को लेकर नाचने लगे और फिर स्वयं उठाकर ले जाने लगे उन भक्तों के साथ। फिर समंदर के किनारे गए, वहाँ उन्होंने उनको स्नान करवाया और फिर महाप्रभु ने उनके चरण आदि धोए, चरणों में जल आदि डाला और कहा कि आज से ये जो समंदर है ये महातीर्थ हो गया है। जो भी व्यक्ति जहाँ हरिदास ठाकुर ने स्नान किया है वहाँ आकर स्नान करता है तो निश्चित रूप से उसका प्रीति कृष्ण के लिए जागृत हो जाएगा। फिर महाप्रभु वहाँ से थोड़ा आगे आए बालुका के जो साइड में जो तट है समंदर, वहाँ एक गड्ढा खोदा और फिर जगन्नाथ के कई सारे महाप्रसाद द्रव्य लाए, उनका डोर लाया, उनके कपड़े लाए, उनका वैरायटी का प्रसाद लाया जो जगन्नाथ ने यूज किया वो सारा डाला अंदर और उसके ऊपर हरिदास ठाकुर का शरीर रखा। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथ से मिट्टी डाले, एक ये बना दिया, मंच जैसा बनाया, फिर परिक्रमा की और फिर महाप्रभु ने फिर गए दौड़ते हुए। कोई देखे ना महाप्रभु वहां से दौड़ते हुए आए यहाँ सिंह द्वार के सामने, अपना ऊपर के वस्त्र निकाले और सब जो शॉपकीपर हैं दुकान वाले उनके पास जाकर मांगने लगे कि हरिदास ठाकुर का आज विजय उत्सव है। क्या है? विजय उत्सव। भक्त अप्रकट होता है और भगवत लीला में वो प्रवेश करता है, इसलिए नित्य लीला प्रविष्ट कहते हैं, तो उसको विजय उत्सव कहा जाता है। भौतिक संसार में विजय उत्सव नहीं कहते। तो ऐसे महाप्रभु का इतना प्रीति था, स्वयं मांगने लगे हैं, पुजारी ने शॉपकीपर प्रसाद डाल रहे थे, स्वरूप दामोदर आए, उन्होंने कहा ये कार्य आपके लिए उचित नहीं है, हम है ना, हाँ उनसे वो ले लिया, सारे बड़ी बड़ी टोकरियां भर भर के इतना प्रसाद ले आए वहां जहाँ हरिदास ठाकुर को समाधि दिया। फिर महाप्रभु ने सब भक्तों को एक लाइन में बिठाया अलग अलग। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, आज मैं प्रसाद सर्व करूंगा। महाप्रभु का जो अंजलि क्या कहते इसको, उठी, इतना बड़ा बड़ा था, भर भर के डाल रहे थे भक्तों के पात्र में, हाँ डिवोटीज मना कर रहे थे लेकिन महाप्रभु डाल रहे थे, भक्त शुरुआत में मना करते हैं, अंतर बड़ा इच्छा होता है, हाँ फिर तो फिर महाप्रभु ने डाला, सारे आगे खड़े हो गए मतलब बैठ गए, लेकिन कोई भी शुरू नहीं कर रहा था। स्वरूप दामोदर परमानंद पुरी ने हाथ पकड़ा, कहा नहीं नहीं आप सबसे पहले बैठे, उनको बिठाया और फिर महाप्रभु ने उससे पहले कहा कि जो भी व्यक्ति जिस भी व्यक्ति ने सबने फिर प्रसाद आदि लिया, महाप्रभु ने कहा जिस भी व्यक्ति ने हरिदास ठाकुर का ये विजय उत्सव का दर्शन किया है, यहाँ सेवा की है, प्रसाद ग्रहण किया है, हाँ वो निश्चित रूप से हाँ कृष्ण के प्रेम का अधिकारी बनेगा। फिर महाप्रभु ने कहा हरिदास ठाकुर का नाम उच्चारण करने मात्र से आपका हृदय कोमल हो जाएगा और कृष्ण के लिए अनुराग प्राप्त करोगे। तो महाप्रभु ने कहा जय जय हरिदास, जय जय हरिदास, एक प्यार आता है जिसमें नामेर महिमा करीला प्रकाश। तो महाप्रभु ने कहा सब बोलो जय जय हरिदास, जय जय हरिदास। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने सबसे बुलवाया कि हरिदास ठाकुर की जय हो, हरिदास ठाकुर की जय हो। हाँ तो इस प्रकार से वो प्लेस है और फिर वो वृक्ष हम देखते हैं, हाँ जब वो यहाँ रथ यात्रा आ रही थी, रथ बनाने के लिए बड़े बड़े वृक्ष चाहिए, तो जब सेवकगण ढूंढने गए कहाँ वृक्ष है, तो वहाँ गए ये वृक्ष अच्छा है इसको हम लेंगे तोड़ेंगे। तो फिर दूसरे दिन वो लोग गए तो देखा कि वो वृक्ष क्या हो गया था, खोखला होकर गिर गया था। फिर उन्होंने कहा ये वृक्ष काम में नहीं आएगा, वो लोग चले गए। तो उसकी जो ड्राई शाखा पुरानी वो अंदर रखी है, फिर दूसरा बकुल ट्री लगाया जिसको हम अभी आलिंगन आदि करते हैं, ऐसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से वो सिद्ध बकुल हैं कि जहाँ बकुल ने भी सिद्धि प्राप्त कर ली है तो मनुष्यों का क्या कहा जाए। तो हरिदास ठाकुर का वो प्लेस है, हरिदास ठाकुर नाम के आचार्य हैं, हाँ केवल नाम के आचार्य नहीं, दो चीज़ें हैं, हम नाम के आचार्य हैं, नाम के भक्त हैं, हाँ लेकिन वहाँ रियली वो हरि नाम के आचार्य हैं। तो हरिदास ठाकुर से रोज प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभुपाद ने तो हमें रोज हरिदास ठाकुर का स्मरण करने का मौका दिया है, रोज हम प्रेम ध्वनि में गाते हैं ना, बोलते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर के पतित पावन चैतन्य देव के नित्यानंद राम के सिद्ध बकुल के निताय दाय गौर प्रेमानंदे।